अगली कहानी है अपराध बोध का प्रेत। उसने ये बात सोची ही कैसे? क्या ऐसे कुत्सित विचार का दिमाग में आना ही उसे अपराधी नहीं बना देता? रक्त बोतल में से बूंद बूंद टपककर अब भी नली में से होता हुआ सुरभि की शिराहों में जज्ब हुए जा रहा था। उसके चेहरे पर लगा हुआ ऑक्सीजन नकाब निरंतर ऑक्सीजन उसके शरीर में पहुंचा रहा था। यही ऑक्सीजन सुरभि की सांसों को किसी भी तरह थामे हुए थे। परंतु नरेन को लग रहा था जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसका गला दबाए जा रही है। उसकी आवाज उसके तालू के साथ चिपक कर रह गई है। उसकी जीभ आवाज को बाहर निकलने ही नहीं देना चाहती। आखिर ऐसा गिरा हुआ विभत्स विचार उसके मन में आया कैसे? उसके पास तो जीवित रहने का कोई कारण भी नहीं बचा है। नरेन, आज तुम्हारे लिए मूली के पराठे बनाकर लाई हूं, सुरभि ने अपनी आवाज की खुशबू बिखेरी। तुम टिफिन में थोड़ा ज्यादा खाना लाया करो ना, मैं तो तुम्हारा सारा टिफिन खा जाता हूं और तुम्हें बाजारी छोले भटूरे खाने पड़ते हैं। जानते हो, तुम खाते हो तो बहुत सुख मिलता है। अगर ज्यादा लाऊंगी तो मां पूछेगी नहीं कि किसके लिए ले जाती हूं? मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, इतना प्यार करती हूं मुझे। मैंने कहा ना, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। सुरभि की खिलखिलाहट भरी हंसी पूरी फिजा में फैल गई थी। सुरभि ने आंखें खोली। नरेन को अभी भी पहचान नहीं पा रही थी। उसे पेशाब करने की जरूरत महसूस हुई थी। अपराध बोध से ग्रस्त नरेन ने जल्दी से कमोड लगाया, पेशाब करवाया और रुई से सफाई कर दी। सुरभि की बीमार आंखों में से आंसू की एक बूंद निकली और उसके तकिए में समा गई। वैसे तो उसके शरीर में कैंसर ने 5 साल पहले ही जड़ें जमा ली थी, पर पिछले 2 वर्ष से उसका संबंध बिस्तर से और भी प्रगाढ़ कर दिया था। करवट बदलते हुए भी हड्डियों के भुरभुराकर टूटने का डर बना रहता था। सीधे लेटे रहने से पीठ में वैसे भी दर्द बना रहता था। बोन मेटास्टेसिस, सुनने में कितना रोमांटिक सा नाम लगता है, कितनी भयानक बीमारी। तुम्हें मां ने बुलाया है। तुम तो कह रही थी कि मम्मी हॉस्पिटल में है। हां, पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर हो गया था, काफी बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मैंने एक दिन अस्पताल में ही तुम्हारे बारे में बात की थी। पहले तो बहुत नाराज हुई, फिर बोली कि उसे ले आना, मैं भी देखूं कि वो चीज क्या है जो मेरी बेटी को इतना पसंद आ गया है। एक बात तो है सुरभि, अगर माँ जी ने मुझे पसंद कर लिया तो तुम्हें छोले भटूरे खाने से मुक्ति मिल जाएगी। भला वो कैसे? लल्लू लाल, फिर तो उन्हें बता सकोगी ना कि टिफिन में एक्स्ट्रा खाना किसके लिए ले जाना है। हंसी के साथ सुरभि के सुंदर दांतों की कतार जैसे किसी टूथपेस्ट का विज्ञापन लगने लगती थी। इतनी लंबी बीमारी भी सुरभि के दांतों को बीमार नहीं कर पाई। अभी 2 महीने पहले तक तो सुरभि घर में बैठकर फोन पर बात भी कर लेती थी। फोन पर उसकी आवाज सुनकर कोई मानने को तैयार ही नहीं होता था कि सुरभि सचमुच बीमार है। पिछले 3 सप्ताह से तो बस अस्पताल का बिस्तर, रक्त की बोतल और ऑक्सीजन का सिलेंडर। बेटा जी, काम कहां करते हो? बस जी, ये जो पंखा ऊपर चल रहा है ना, उसी कंपनी में सेल्स ऑफिसर हूं। तनख्वाह कितनी मिल जाती होगी बेटे? 850 रुपए। माँ जी, ऊपर की कमाई नहीं है, हाथ में बस 850 रुपए ही आते हैं। वैसे सरू का कहना है कि इतने रुपयों में घर चला लेगी। माँ जी के माथे पर बल दिखाई दिए। सिगरेट शराब की कोई आदत है क्या? माँ जी, आज तक तो दोनों चीजें नहीं पी, भविष्य की तो राम जी ही जाने। सुरभि बता रही थी कि माँ बाप के अकेले बेटे हो। जी हाँ, एक बहन है बड़ी, शादी हो चुकी है उसकी, 2 बेटे भी हैं। माँ जी के चेहरे से नरेन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि वो साक्षात्कार में सफल रहा या उसे रिजेक्ट कर दिया गया। पर कुछ दिनों बाद सुरभि के टिफिन में उसका खाना भी आने लगा था। सुरभि ने फुसफुसाहट भरी आवाज में कुछ कहा। नरेन का अपराध बोध और गहरा हो गया। जिस गले से दाग और गालिब की गजलें माधुर्य पाती थीं, उसी गले से आज फुसफुसाहट भी मुश्किल से निकल पा रही थी। फिल्मी गीतों को लेकर भी नरेन और सुरभि में नोकझोंक चलती रहती थी। नरेन की पसंदीदा जोड़ी थी शैलेंद्र और शंकर जयकिशन, जबकि सुरभि को शकील की शायरी अच्छी लगती थी। श्रृंगार रस का उपयोग जिस तरह शकील करते हैं किसी और फिल्मी शायर के बस की बात ही नहीं। उस पर नौशाद का संगीत, मेड फॉर ईच अदर जोड़ी। जयपुर भी कोई हनीमून जाने की जगह है, वहां से माउंट आबू भी तो जाएंगे। पर जयपुर क्यों? सरू, न जाने क्यों आमिर के किले में जाकर ऐसा लगता है जैसे मैं वहां पहले भी आ चुका हूं। तुम भी मेरे साथ वहां चलकर वो किला देखना। लोग तो इंग्लैंड और अमेरिका से आते हैं वो महल देखने। उनका हनीमून नहीं होता, हनीमून के लिए तो हर कोई हिल स्टेशन पर ही जाता है। तो पहले माउंट आबू चले चलते हैं, वापसी में जयपुर चले आएंगे। नहीं, पहले जयपुर ही चलेंगे। नरेन की हर बात रख लेती है सुरभि। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सुरभि ने अपनी कोई बात नरेन पर ला दी हो। जयपुर में ही एक ब्रिटिश जोड़ा भी अपने हनीमून पर आया हुआ था, उसी होटल में ठहरा था जहां नरेन और सुरभि रुके थे। देखते ही अंग्रेज युवती के मुंह से निकला, मेड फॉर ईच अदर कपल। नर्स आई है, सांवले रंग की, मध्यम काठी, नीली पोशाक। आमतौर पर नर्सें सफेद पोशाक पहनती हैं, संभवतः अस्पताल वाले सफेद रंग को शोक का प्रतीक मानते हैं, या फिर कोई और भी कारण हो सकता है, पर इस अस्पताल में नर्सें नीले रंग के कपड़े पहनती हैं। नरेन उसे देखे जा रहा था। उसका मन हुआ कि आगे बढ़कर नर्स के होठों पर एक चुंबन अंकित कर दे। दूसरा कुत्सित विचार, अभी तो पहले विचार के अपराध बोध से ही बाहर नहीं निकल पाया था, आज उसका मन बेलगाम क्यों हुए जा रहा है। नरेन के विचारों से अनभिज्ञ नर्स ने सुरभि की नब्ज देखी, फाइल में लिखा, खून का टपकना चेक किया। सुरभि की आंख खुली। हेलो, कैसे हैं अभी? रात को नींद ठीक से आया? सुरभि के बीमार चेहरे पर भी मुस्कान की एक लकीर दिखाई दी। उसकी आंखें कह रही थी, अब तो बस अंतिम निद्रा की प्रतीक्षा है। सुरभि को ऑक्सीजन और खून की बोतल ने एहसास करवा दिया था कि मामला चला चली का ही है। कल रात ही नरेन के कानों में फुसफुस आई थी, कार के ट्रांसफर पेपरों पर मेरे साइन करवा लो, घर की चीजों का हमेशा से ही बहुत ख्याल रखती है। ये दराज क्यों खुला छोड़ दिया? अलमारी भी हमेशा खुली छोड़ देते हो, कभी भी अपनी रखी हुई चीजें तुम्हें बिना ढूंढ मचाए मिलती है क्या? जब मैं नहीं रहूंगी ना, तब मेरी याद आएगी तुम्हें। बैठक में ये शोपीस सजाने का क्या मतलब है? सुरभि को घर एकदम तरतीब से सजा हुआ अच्छा लगता है। बहुत बार नरेन को कह चुकी है कि फिजूल की रद्दी कागजों को फेंककर बाहर करो, पर नरेन के लिए जिंदगी को सिलसिलेवार तरतीब से सजाना संभव ही नहीं है। उसे तो यह भी समझ में नहीं आता कि उसका कौन सा कागज रद्दी है और कौन सा काम का। वैसे पत्रिकाओं के संपादकों की राय में तो नरेन का सारा लेखन ही रद्दी है, इसीलिए तो उसकी सभी रचनाएं या तो लौट आती हैं या फिर रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं। कितने वर्षों से लिख रहा है नरेन, कहीं किसी भी पत्रिका में एक भी तो रचना नहीं छपी। ये अलग बात है कि वो अपने आप को कवि भी समझता है और कहानीकार भी। जरा थोड़ी देर के वास्ते बाहर जाने का, हम पेशेंट को स्पंज देगा। नर्स की आवाज नरेन को चौंका गई। सुरभि को उठकर बाथरूम में गए तो एक महीने से भी ऊपर हो चुका है, स्पंज से ही काम चल रहा है। सुरभि को डेटॉल की महक अच्छी नहीं लगती, नर्स को यह मालूम है। स्पंज के लिए पानी में यूरोक्लीन डाल रही है। सुरभि नरेन को कुछ कहना चाहती है। नरेन अपना कान सुरभि के होठों के पास ले जाता है। चुंबन का हल्का सा स्वर उसके कानों में पहुंच जाता है। सुरभि की आंखें फिर गीली हैं। नरेन का अपराध बोध और गहरा गया है। मेरी छाती तो कटवा आए, मुझे प्यार कर पाओगे अब? 5 वर्ष पहले भी सुरभि अपने कैंसर और कटे हुए स्तन को लेकर इतनी बेबाकी से बात कर लेती थी। नरेन ने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की कि उसका काम एक छाती से भी चल जाएगा। उसे लगता था शायद सुरभि से अधिक वो अपने आप को समझा रहा है। कई बार सोचा कि सुरभि की बीमारी पर एक कहानी भी लिख डाले, समझ नहीं पाया शुरू कहां से करे। अपने लेखन को लेकर तो उसे कई बातें समझ नहीं आती थी। उसकी कोई भी रचना छप क्यों नहीं पाती? ये सवाल हमेशा उसके सामने मुंह बाहे खड़ा रहता है। समझ तो वो ये भी नहीं पाता था कि सुरभि के अंतिम समय में वो अकेला ही उसके पास क्यों बैठा है। सुरभि का तो व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि अस्पताल में उसे देखने के लिए मित्रों का तांता लगा रहता है, पर मित्र तो हमेशा बाहर वाले ही कहलाते हैं ना। फिर अंदर वाले सुरभि के माता पिता, भाई बहन, ससुराल वाले सब कहां हैं? मैंने अपनी मां से बात की थी। उसने कौन सा बड़ा तीर मार लिया अपने? हर बेटी अपनी मां से ही तो बात करती है। मेरी बात को यूं मजाक में ना उड़ाओ। वैसे तो मुझे अपनी मां से यही उम्मीद होनी चाहिए थी, फिर भी इतना कोरापन। वो ऐसा कह देगी उसकी भी आशा नहीं थी। सुरभि की आंखें बात करते करते गीली हो गई थी। ऐसी भी क्या बात हो गई जो हमारी सरू को इस कदर गीला कर गई? सरू ने भावुक होकर कहा। मैंने पूछा था कि पता नहीं मैं कितने दिन और जिंदा रहूंगी। मेरे मरने के बाद मेरे बड़े भैया अगर मेरे बच्चों को रख ले। मैंने तो ये भी कहा था कि तुम सारा खर्चा दोगे, पर
क्यों, क्या क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने मेरी उम्मीद की कश्ती को तैरने से पहले ही डुबो दिया। कहती हैं, देख भाई गुड्डी, तेरे बच्चे अलग तरह से पले हैं, उनको हम अपने पास नहीं रख सकते। अपनी मरती हुई बेटी का झूठा दिल रखने के लिए भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मौत के बाद मेरे बच्चों को संभाल लेंगी। शांत सुरभि, शांत। हम कितने किस्मत वाले हैं कि हमारे रिश्तेदार हमसे झूठ नहीं बोलते। पर सुरभि की बीमारी तो झूठ नहीं, उससे अधिक कठोर सत्य तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता।
डॉक्टर कुरकुरे ने तो घोषणा ही कर दी थी। मिस्टर नरेन, मेरा ख्याल है आप टाटा अस्पताल जाकर मॉर्फिन ले आए। योर वाइफ नीड्स दैट।
डॉक्टर साहब, इसका क्या मतलब है? कितने दिन की मोहलत देते हैं आप?
बस एक महीना भर समझ लीजिए। नरेन ने अचानक अपनी सेकंड हैंड मारुति के ब्रेक पूरे जोर से दबा दिए थे। अगर पीछे आने वाला रिक्शा चालक चौकन्ना ना होता तो दुर्घटना घट ही जाती।
सॉरी डॉक्टर।
नरेन का बदन कांप रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर नरेन, रिलैक्स।
कैसा आराम? सुरभि के शरीर की सारी हड्डियों को कर्क रोग खोखला कर गया था। सरू के बूटे की तरह लंबी सुरभि अब अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो सकती थी। नरेन सुरभि की आंखों में मौत का लंबा साया हर रोज देखा करता था। उसकी आंखें आज भी इसी प्रतीक्षा में हैं कि शायद उसकी मां उसके अंतिम क्षणों में किसी भी तरह उसके पास आ जाए। इंसान की हर इच्छा कहां पूरी हो सकती है? सुरभि की आत्मा को कहीं भटकना ना पड़े, अपनी मां को कहीं खोजती ना रहे वो।
नरेन में भी वो अपने पिता को ही खोजा करती है। नरेन की बहुत सी आदतें सुरभि के पिता से मिलती जुलती हैं। नरेन का विनोदी स्वभाव, गुस्सा, प्यार, तुनक मिजाजी, मिठाई का शौक, बच्चों में पढ़ाई की रुचि और सबसे अधिक जिंदा दिली, ये सब उसे अपने पिता की याद दिला जाते हैं।
अब न जाने कौन सी बातें नरेन के दिमाग की डायरी में सुरभि की यादें ताजा करती रहेंगी।
सरू, तुम डायरी भी लिखती हो?
नहीं, बस यूं ही।
अरे, मुझे तो इतने वर्षों में पता ही नहीं चला।
अरे, तुम्हें अपनी कविताएं और कहानियां लिखने से फुर्सत ही कहां मिलती है जो तुम किसी दूसरे की लिखी चीजें पढ़ो।
मेरा लेखन तो बस एक मृग मरीची का ही है सुरभि।
मेरी कामना जितनी अधिक प्रबल होती है कि मेरा लेखन प्रकाशित हो, छपाई मुझसे उतनी ही दूर होती चली जाती है। ये बात मुझे अंदर ही अंदर आहत करती रहती है। सर्प दंश से अधिक विषदायक है ये सच्चाई कि मेरा लेखन छपने के लायक ही नहीं है।
ऐसा क्यों सोचते हो जी?
और फिर छपास की भूख भी कोई भूख हुई?
नहीं, मुझे देखिए, जब हायर सेकेंडरी में थी तब से लिख रही हूं। कम से कम 3 किताबों के लायक कहानियां तो लिख ही चुकी हूं।
आपको आज तक पता भी चला? मेरे मन में छपने की भूख है ही नहीं, बस लिखती हूं। आत्मसंतोष मिल जाता है। कहानी फाइल में रख देती हूं। मैं तो उन्हें दोबारा साफ सुथरा करके लिखने की भी नहीं सोचती। यदि किसी काम से मन को सुकून मिल जाए तो उससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। मैं तुम्हारी तरह महान नहीं हूं सुरभि। मैं देखता हूं इतनी खराब खराब कविताएं अखबारों में, पत्रिकाओं में छप जाती हैं, फिर मेरी ही रचनाओं की ऐसी परिणति क्यों? महान सुरभि की परिणति भी कितनी दर्दनाक है। उसे भूख लगी है, कुछ भी खा नहीं पा रही, उल्टी हो जाती है।
अरुण दूध की बोतल ले आया है, बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतल, उसमें थोड़ा दूध डालकर पिलाने की कोशिश में है नरेन। अपराध बोध का प्रेत फिर से तंग करने लगा है। इस दूध पीती बच्ची के बारे में उसने ऐसा सोचा ही कैसे? अरुण को कितना स्नेह देती है सुरभि। इस महानगर में आपके बाद यदि मुझे किसी पर विश्वास है तो वो अरुण पर है। वैसे आपको अरुण से कुछ सीखना चाहिए। दुनियादारी के मामले में अरुण जितना सफल हो पाना बहुत कठिन है। अरुण भी रोज अस्पताल आता है, दो रातें तो अस्पताल में ही सोया। नरेन को आराम देना भी तो आवश्यक है। मनी मन द्वंद्व जारी है। नरेन सोच रहा है अरुण को बता देने से क्या अपराध बहुत कम हो जाएगा। सुरभि बच्चों को मिलना चाहती है। अंतरा की 10वीं की परीक्षा चल रही है। अपूर्व तो छोटा है, अभी 5वीं क्लास में पढ़ रहा है। सुरभि की बेचैन निगाहें दीवार पर जैसे कुछ ढूंढ रही हैं। नरेन के माथे पर पसीना छलकने लगा है। कहीं सुरभि के जाने से पहले उसका ही दम ना निकल जाए। नर्स को बुलाता है नरेन। सुरभि का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। नरेन का प्रेत और बड़ा होता जा रहा है। अरुण को फोन करता है, बच्चों को अस्पताल ले आओ, मां से मिल लेंगे। अरुण के स्वर में झल्लाहट है, भाभी को अकेला क्यों छोड़ा, जल्दी वापस उसके पास जा। सारी उम्र साहित्यिक गोष्ठियों के चक्कर में रहा और भाभी को कभी वक्त नहीं दिया, और अब उनके आखिरी वक्त में भी उनके पास नहीं बैठ रहा। तुम्हारे पास घर के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। कैसा है ये इंसान, मर जाऊंगी ना तब ढूंढते फिरना, हाथ मलते रह जाओगे। रोने लगती है, हिचकियां बन जाती है। मेरे पास बैठा करो ना, तुम्हारे बिना बिस्तर काटने को दौड़ता है। मर जाऊंगी तो कर लेना साहित्य की सेवा। पहली बार सुरभि ने नरेन को तुम कहकर पुकारा था। वो तो आप और जी के बिना बात ही नहीं करती थी। टैमोक्सोफिन और ना जाने क्या क्या दवाइयां खा रही है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, मौत का डर। नरेन को पकड़कर अपने पास बिठाए रखना चाहती है सुरभि। प्यार की पराकाष्ठा है सुरभि। नरेन समझ नहीं पाता, सुरभि बनकर सोच नहीं पाता। आसान काम है क्या? सुरभि बनकर सोचना आसान काम है क्या? इतना लेखन करके एक रचना भी ना छपवाना क्या आसान काम है? ऐसे मुश्किल काम सुरभि ही तो कर सकती है। सुरभि अच्छी पत्नी भी है, अच्छी मां भी है, अच्छी मित्र भी है और अच्छी लेखक भी है। हाँ, नरेन उसकी सारी फाइलें चुपके से पढ़ गया था, उसे बिना बताए। कई रचनाएं पढ़कर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। इतना दर्द कहां से कोई इतना दर्द ला सकता है अपने लेखन में, और ऐसा लेखन छपवाना भी नहीं चाहती। पागल है, पागल ही तो है, वरना नरेन जैसे साधारण इंसान से विवाह क्यों करती? उसकी बेहूदगियां बर्दाश्त करते सुरभि को वर्षों बीत गए हैं। डॉक्टर दलजीत सिंह तो सदा नरेन को ही दोषी ठहराते हैं, साफ साफ अपनी कड़वाहट नरेन पर उडेल देते हैं। सुरभि को रिसर्च करवा रहे थे, गाइड थे उसके, सुरभि को अपने कॉलेज में लेक्चरशिप भी दे रहे थे, पर अंतरा बस 2.5 वर्ष की थी उस समय। नरेन की सास या सुरभि की सास, दोनों में से कोई भी अंतरा की देखभाल को तैयार नहीं हुआ। नरेन और सुरभि दोनों ही अंतरा को क्रच में रखने को राजी नहीं हुए थे। अंततः सुरभि नौकरी नहीं कर पाई। डॉक्टर दलजीत सिंह के अनुसार यही एक घटना सुरभि के कैंसर का कारण भी बनी। वो तो नरेन को सुरभि का कातिल कहने से भी नहीं चूकते। अंतरा और अपूर्व को लेकर अरुण आ गया। दबदबाई आंखें, सफर की तैयारी, बच्चों को प्यार, अंतरा का रोना। अपूर्व चुपचाप एक तक मां को देखता जा रहा था। नरेन, सुरभि, रक्त की बोतल, ऑक्सीजन का सिलेंडर, नकाब, ये सब सुरभि के आभूषण लग रहे थे। सुरभि इस समय भी कितनी सुंदर लग रही थी। कीमोथेरेपी, टैमोक्सिफेन, सब फेल। आंखें मां को ढूंढ रही हैं, भाई की प्रतीक्षा में है। मेरी एक बात मानोगे? तुम्हारी बात कब नहीं मानता? मेरे मरने के बाद दूसरी शादी मत करना, मेरे बच्चों का जीवन नरक बन जाएगा। तुम मजबूर हो जाओगे, दूसरी मां बस दूसरी ही हो जाती है, मां नहीं रह पाती। कल तो तुम कह रही थी कि तुम्हारे मरने के बाद दूसरी शादी जरूर कर लूं ताकि तुम्हारा महत्व जान सकूं। यही तो मेरी समस्या है, जीवन में पहली बार किसी मुद्दे पर एक राय नहीं हो पा रही हूं। तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम फिर पहले की तरह चलने लगोगी। चलना तो दूर, अब तो बैठ भी नहीं पाती। बिस्तर बिस्तर बस बिस्तर। पिछले 2 वर्ष से बाहर की दुनिया से अब उसका संपर्क बस टेलीविजन और टेलीफोन के माध्यम से है। तुम सारा सारा दिन फोन से ही चिपके रहते हो नरेन, कभी हमें भी वक्त दिया करो। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, कभी सोचा है? इन बच्चों को भी तुम्हारा वक्त चाहिए। मैं कितनी अकेली हो जाती हूं, मेरे साथ करने के लिए तुम्हारे पास कोई बात नहीं। बाहर वालों के साथ घंटों बतिया सकते हो। अंतरा की परीक्षा है, उसे जल्दी घर लौटना है। अरुण बच्चों को छोड़कर फिर वापस आने को कह रहा है। तीनों के वापस जाते ही कमरे में सुरभि और नरेन अकेले रह जाएंगे। नरेन के अपराध बोध का प्रेत फिर सक्रिय हो जाएगा। नरेन बेचैन, सुरभि की आंखें बंद है, शायद सो रही है। अगर सुरभि को कुछ हो गया तो ये प्रेत उसे कभी नहीं छोड़ेगा, उसे जकड़े रहेगा। प्रेत का अस्तित्व नरेन को बेचैन किए जा रहा है। उसे इस अपराध के लिए सुरभि से माफी मांगनी होगी। उसे सुरभि को विश्वास दिलाना होगा कि ऐसा कुत्सित विचार उसके मन में फिर कभी नहीं आएगा। मुझे माफ कर दो सुरभि, मैं सोच रहा था तुम मर जाओगी तो तुम्हारी सारी कहानियां और कविताएं अपने नाम से छपवाऊंगा। मुझे माफ कर दो सुरभि। सुरभि का सिर लुढ़क कर स्थिर हो गया है। अब उसे रक्त या ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं थी।